कर्ताओं का अर्थ यही नहीं होता है, कर का अर्थ होता है ये हाथ, और ताल का अर्थ होता है ताली। सबके पास कर्ता है।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा हरे राम हरे राम कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्यलीला प्रवीश विष्णुपाद परिवारजकाचार्य अष्टोत्तरशत त्रिदंडी सन्यासी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री श्री राधा दामोदर जी की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। दामोदर मास की जय। दामोदर लीला की जय। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। विश्व मंगल पतित पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। सब वेद भक्त वृंद की। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री श्री गौर निताय की, जय श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताय गौर हरि की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टकी। हरे कृष्ण। तो रविवार के इस प्रातकालीन भागवत सत्र में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है। वैसे आप सभी जानते हैं कार्तिक मास दामोदर मास का समय वर्तमान समय में चल रहा है। सभी मासों में श्रेष्ठ मास कार्तिक मास माना गया है, जिसको दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान के जो भी नाम हैं वो 12 महीनों को दिए गए हैं। जो हमारे पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों का नाम भगवान के नाम से है। तो कार्तिक मास है, उसको दामोदर मास के नाम से जानते हैं। और विशेषकर इस मास में भगवान की अति दिव्य लीला दामोदर लीला संपन्न हुई। और हमारे जो राधा गिरधारी हैं, जिनका नाम गिरधारी है, गोवर्धन को धारण करने के कारण जिनका नाम गिरधारी हुआ, वो गोवर्धन गोवर्धन धारण की लीला भी इसी मास में संपन्न हुई। और भी राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य वो भी इसी मास में हुआ। तो ये बहुत ही पवित्र दिव्य मास है कार्तिक मास, और इसकी बड़ी महिमा है। श्री पद्म पुराण में तो 4-5 अध्याय हैं इस कार्तिक मास के लीला के बारे में, जिसको हमने प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के मुखारविंद से जो कार्तिक मास की महिमा सुनी, वो सभी 4-5 अध्याय पद्म पुराण में हैं। सत्यभामा और भगवान कृष्ण का संवाद, भगवान शिव और पार्वती का संवाद कार्तिक मास के महिमा के विषय में। तो कार्तिक मास का वर्णन और महिमा और व्रत के बारे में यहाँ बहुत कथाएं हुई हैं। विशेषकर परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने कृपा किया और हमको कार्तिक मास का भूरी भूरा वर्णन सुनाया। और दामोदर लीला, दामोदर लीला के विषय में भी हम प्रतिदिन गाते हैं। ये कार्तिक मास का महिमा है, व्रत के अंदर आता है कि दामोदर मास में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ करना और भगवान को दीपदान करना। अन्य तो जो कार्तिक मास के व्रत हैं वो तो हैं ही, जैसे कार्तिक मास के महीने में उड़द की दाल से वर्जित रहना, कार्तिक मास में धाम वास करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कथा कीर्तन श्रवण करना, और भी कहीं भूमि पर सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, इस प्रकार के कई व्रत के नियम हैं, उनको पालन करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रत का जो भी पालन करते हैं उनको उस समय व्रत पालन का अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इस मास में जितना भी हम जप करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, जितना भी भगवान का सेवा करते हैं, उसका फल बहुत गुना हमको मिलता है। तो इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आध्यात्मिक जीवन का उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की कृपा से और कई वैष्णवों की कृपा से हम लोग इस व्रत का पालन करने में पापा पगली करते हैं, और इसके साथ ही आज भी बहुत ही बड़ा उत्सव है, बहुत विश्व विख्यात उत्सव है दीपावली। दीपावली, दीप आवली, ये संस्कृत में दीप प्लस आवली। दीप का अर्थ आप सभी जानते हैं दीपक, और आवली का अर्थ होता है समूह या कतार, लाइन जैसे कतार होती है उसको आवली कहते हैं। समूह को भी आवली कहते हैं और कतार भी आवली, जैसे हम प्रातःकाल दीपदान करते हैं तो उसको पूरा आवली में सजा देते हैं। तो मैं कल प्रयास कर रहा था पद्म पुराण से, रामायण से, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं, लेकिन लोक से सुना है कि ये जो दीपावली का उत्सव है तो दोनों जो 10 अवतार में 2 मुख्य अवतार हैं राम और कृष्णा, इन दोनों भगवान की महत्वपूर्ण लीलाएं आज के दिन संपन्न हुई, बहुत ही दिव्य लीलाएं। जैसे भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी प्रिया सीता जी को वापस प्राप्त करके और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आज के दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने भगवान के स्वागत में और अपने आनंद उल्लास से इस उत्सव को बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया। भगवान के स्वागत के लिए कई प्रकार की तैयारियां की, अपने घर को साफ सुथरा पहले से किया, और सीता जी भी आ रही हैं, लक्ष्मी जी भी आ रही हैं, तो घर को सजाया गया, नए नए वस्त्र पहने गए, घरों में लिपाई पुताई किया गया, फूल और आशोपालव के पत्तों के तोरण बांधे गए, जो बहुत शुभ होता है। ये आशोपालव और फूल, आशोपालव जो वृक्ष है उसके पत्ते बहुत शुभ होते हैं और कई आसुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये शास्त्र युक्त बात है। तो इस प्रकार के तोरण बांधे गए और लोगों ने बहुत आनंद, भगवान राम के विरह में सभी अवधवासी बहुत दुखी थे, तो अब भगवान आए हैं उनके अवध में, पुनः उनके जीवन में आए हैं, तो उन्होंने हर्ष उल्लास उनके जीवन में आया। वास्तव में सच्चा सुख, सच्चा आनंद हमारे जीवन में तभी आता है जब हमारे जीवन में भगवान आते हैं, जब हमारे घर में भगवान की सेवा पूजा होती है, भगवान का नाम जप कीर्तन होता है, वास्तव में वही व्यक्ति अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। तो अगर हम हमारे जीवन में आनंद और सुख लाना चाहते हैं तो भगवान को लाना चाहिए। जब भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए तो बलि महाराज ने उनका स्वागत किया, उनको उचित आसन प्रदान किया और उनके आगत्य में उन्होंने जो श्लोक उच्चारण किया है कि प्रभु आपके आने से आज मेरा कुल पवित्र हो गया है, असुर कुल में थे लेकिन कहा आज मेरा कुल पवित्र हो गया आपके आने से, और आपके आने से, हमारे घर में आने से हमारे पूर्वज तृप्त हो गए। हर व्यक्ति चाहता है अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए, है ना। अभी अपने अपना श्राद्ध के 15 दिन मनाए, उसमें पूरा 15 दिन यही चलता है, हमारे पूर्वजों को संतुष्ट करना है। लेकिन बलि महाराज कहते हैं आपके हमारे घर आने से हमारे पूर्वज जो हैं वो तृप्त हो गए। आज मेरा कुल पावन हो गया आपके आने से, आज मेरे पूर्वज तृप्त हो गए और आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। हमारे घर में भगवान के आने से हमारा हर कर्म सफल हो जाता है, हर कार्य सफल हो गया। तो आपके आने से आज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। इस प्रकार भगवान जब हमारे घर में आते हैं, पहले कुछ लोग सोचते हैं भगवान को अब कैसे, भगवान को विग्रह रूप में भी भगवान को घर में रखना, वो भी साक्षात भगवान से विग्रह अभिन्न है। कल बहुत सुंदर कुंभदास प्रभु बता रहे थे कि विग्रह के द्वारा ही हमारे हमारा भगवान के साथ संपर्क होता है, आदान प्रदान होता है और हमारा भाव उदित होता है। भगवान को भोग धराना है, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान के लिए ये लाना है, अब भगवान को सुलाने का समय हो गया, ये सब भाव हमारे अंदर उद्दीपन कैसे होगा। वास्तव में श्री विग्रह को रखने से साक्षात भगवान के साथ हमारा सेवा का आदान प्रदान और प्रेम का आदान प्रदान होता है। व्यक्ति कहीं भी बाहर रहता है, देखता है ओ 4:30 बज गया, भगवान को उठाने का समय हो गया, चलो 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 घर जाना है। कई माताएं जो बाजार में घूमती, नहीं 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 7 बज गया, अभी मेरे को आरती संध्या आरती का समय हो गया, वो सब काम बाजार छोड़ के घर चली जाती, अभी भगवान को भोग लगाने का समय। तो कितना बहुत सुंदर ये भगवान की कृपा, कृपा अवतार है, अर्चा अवतार। तो इस प्रकार भगवान के अर्चा विग्रह को घर में रख कर हम भगवान की सेवा करते हैं, ये भगवान की साक्षात सेवा तुल्य है। इससे हमारा बहुत आध्यात्मिक उन्नति होता है, सीधा भगवान से संपर्क होता है। तो इस प्रकार भगवान को अपने घर में रखना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए, यही हमारे जीवन की सफलता है, सार्थकता है और यही जीवन का सिद्धि। तो इस प्रकार भगवान राम जब पुनः अयोध्या में आए, सब अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया और उत्सव मनाया, बहुत ही आनंद उनको हुआ और इसी आनंद में भगवान के स्वागत में दीपों को जलाया गया है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जब भगवान आ जाते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है, ये दीप जलाकर प्रकाश किया। आपके आने से हमारा जीवन ज्योतिमय हो गया, प्रकाशमान, अंधकार आज हमारे जीवन से दूर। और भी एक भक्त बता रहे थे हमको कि दीप दान करते हैं जो भगवान को, तो दीप मतलब ज्योति, हम भी हमारा भी स्वरूप एक जैसे, हमारा जो आत्मा है वो भी ज्योति स्वरूप है, तो हम अपने आप को भगवान को अर्पित करते हैं, इसका ये भी भाव है। तो ये दीपावली भगवान राम के स्वागत में दीपों की समूह मालाएं लगाई गई, और एक मतलब समन्वय है कृष्ण की लीला से भी, कि दामोदर लीला हुई तो इसमें भी हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने कहा कि भगवान को दीप दिखाओ, दीप दान करो, और भगवान राम भी आए तो उनको भी दीपक दिखाए गए स्वागत में, और कृष्ण की दामोदर लीला हुई तो इसमें भी भगवान को दीपक दिखाए। प्रभुपाद जी दामोदर लीला के एक अनुवाद में लिखते हैं कि ये लीला भी दीपावली के दिन संपन्न हुई थी। भगवान का जो दाम बंधन है, माता यशोदा ने जो भगवान को बांधा, तो ये भी दीपावली के दिन हुआ था। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से भारत में मनाया जाता है, और उसमें भी विशेषकर प्रभुपाद जी बम्बई का उल्लेख करते हैं कि बम्बई में तो बहुत फूल झड़ियाँ जलाकर, पटाखे फोड़कर और दीप जलाकर बहुत ही बड़े पैमाने पर बम्बई में ये उत्सव मनाया जाता है, और इसी उत्सव के दिन माता यशोदा ने कृष्ण को भी बांधा था। बहुत अद्भुत लीला, दामोदर लीला बहुत अद्भुत लीला है। अब देखिए हमारे आचार्यों ने कृष्ण को बांधा गया इस लीला को गाने, इसका गान पूरे महीने करने के लिए बताया। अरे कृष्ण ने कई लोगों को मुक्त किया है ना, मुक्त किया, मोक्ष दिया, लेकिन उस लीला को पूरा महीने नहीं गाया जाता है। लेकिन भगवान को बांधा गया तो ये लीला पूरा महीना गाओ, पूरे महीने गाना चाहिए, दोनों टाइम गाना चाहिए। अरे जिनको बांधा है वो लीला को पूरा महीने, एक बात। दूसरी अद्भुत लीला की, ये भगवान स्वबंधने हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्ट्वा परिश्रमम हैं कृपा आयास स्वबंधने, कृपा आयास दृष्ट्वा स्व परिश्रमम, मातु माता का परिश्रम देखकर कृष्ण की कृपा लीला उदित हुई और स्वबंधने अपने से बंधे, अपने आप कृष्ण को कौन बांध सकता है, लेकिन वो अपने से बंध गए। बस अब मुझे बंध जाना है, पहले मना नहीं, मेरे को कोई नहीं बांध सकता, बहुत रस्सी कितना भी रस्सी लाओ कुछ भी करो मेरे को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन माता यशोदा का जब परिश्रम देखा कि माता यशोदा के मुख पर पसीने की बूंदे आ गई, बहुत परिश्रम कर रही है, तो जब भक्त भगवान के लिए परिश्रम करता है, श्रम करता है ना, भक्त लोग जब श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वो भगवान की कृपा उदित होती है। ये दो अंगुल ऐसा बताया गया, दो अंगुल का दूरी है। दो अंगुल देखिए कितना रस्सी लाया, न तो एक अंगुल कम पड़ रहा है न तीन अंगुल कम पड़ रहा है, देखा ना, तीन अंगुल भी कम नहीं पड़ा और एक अंगुल भी कम नहीं पड़ा, दो अंगुल ही कम पड़ा। इसका क्या कारण है, ये दो अंगुल जो हैं, एक अंगुली हमारी तरफ से, एक अंगुल कृष्ण की तरफ से, ये दो अंगुल का दूरी। हमारी तरफ से प्रयास नहीं है, श्रम नहीं है, हम भगवान की सेवा पूजा भजन नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण को बांधने, कृष्ण के लिए हम जब परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो उधर से कृष्ण की कृपा भी उदित नहीं हो रही है। एक अंगुल उधर का दूरी, एक अंगुल इधर का दूरी। लेकिन माता यशोदा दृष्ट्वा परिश्रमम, मातु दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, ऊपर की लाइन में है स्वमातु गात्र, ऐसा है श्रम गात्राया, स्निग्ध गात्राया, मतलब अपनी माँ यशोदा ने परिश्रम किया, उसके मुख पर पसीना आ गया, सब पूरा शरीर लथपथ हो गया। इस प्रकार, तो इस प्रकार का परिश्रमम दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, जब कृष्ण ने देखा कि भक्त हमारे लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, हमारा मंदिर बन रहा है तो देखो घर घर जा रहा है, उधर से लांग मांग कर पैसा ला रहा है, वो कर रहा है, हमारे लिए कितना परिश्रम कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, तब भगवान ऐसा परिश्रम देखते हैं भक्त का, तो उनकी कृपा जो है, कृपा शक्ति है, वो उदित होती है। माता यशोदा का परिश्रम देखकर कृष्ण की कृपा शक्ति उदित हुई और बंध गई। तो ये दो अंगुल का दूरी, दूर बहुत दूरी नहीं है, तीन अंगुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण बंध गए। तो अद्भुत लीला है ये भी, बहुत अद्भुत लीला है। एक एक इसके प्रसंग पर अगर विचार किया जाए, आप देखते हैं कि इस लीला में जब कृष्ण स्तनपान कर रहे थे यशोदा का, तो स्तनपान कर रहे थे तो तृप्त नहीं हो रहे थे, तृप्त नहीं हो रहे थे, वो और पीना चाह रहे हैं, और पीना चाह रहे हैं, स्तनय कामा, उनमें कामना हुई, काम हुई, वो अप्त काम है। कृष्ण कैसे हैं, अप्त काम मतलब आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट है, उनको किसी कोई कामना नहीं है। लेकिन ऐसे अप्त काम आत्मा राम को स्तनय कामा, यशोदा का स्तन पीने का काम आया, और फिर पीने बैठे तो लोभ आया, बस पी रहे हैं, पी रहे, तृप्त नहीं हो रहे हैं। उधर माता यशोदा का स्तन का दूध नहीं घटा और उधर कृष्ण भी तृप्त नहीं हुए, तो लोभ हुआ, काम हुआ, लोभ हुआ। माता यशोदा ने देखा कि वो दूध पद्मगंधा गाय का दूध है और वो उफन कर जा रहा है, तो कृष्ण को एक ही झटके में नीचे रख, कृष्ण नीचे गोद से नीचे उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक झटके में बिठा दिया उतार कर। अब अगर इस पर विचार किया जाए कि पूतना, आज का जो प्रसंग है हम इस पर बोलेंगे अभी थोड़ा देर बाद, तो पूतना बहुत शक्तिशाली थी, राक्षसी थी, उसमें बहुत शक्ति थी, वो आकाश में उड़ती थी, कई बच्चों को लेकर उड़ सकती थी, कैसा भी रूप बना सकती थी, पूतना बाल बहुत शक्तिशाली थी, असुरनी थी ना, राक्षसी जात की थी, बहुत शक्तिशाली थी। और कृष्ण 6 दिन के थे, अभी तो 3 साल के हैं, उस समय कितने दिन के हैं, 6 दिन का बालक में क्या शक्ति होता है। और 6 दिन के बालक जब पूतना अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने कड़ाई से उसके स्तनों को पकड़ लिया और सट गए शरीर के और स्तनपान करने लगे, और कृष्ण का रोष ने उनके प्राण, कृष्ण का रोष जो था वो प्राण पीने लगा और कृष्ण उसका स्तन पीने लगे। तो जब प्राण पीने लगे, उसका कृष्ण का रोष प्राण पीने लगा, तो उसको असह्य वेदना होने लगी जिसको वो सह नहीं, तो वो पूतना उठी, अरे छोड़ दे, बहुत हो गया लाला छोड़, वो छोड़ नहीं रहा है, तो वो नहीं छोड़ रहा, तो अपने हाथ से प्रयास किया तो भी नहीं छोड़ा पाई, और वेदना, और फिर उठ गई, खड़ी होकर घर से बाहर चली गई, अरे छोड़ रे मोंचा, अरे छोड़, वो छोड़ नहीं रहा है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली पूतना भी नहीं छुड़ा पा रही है, इतना कड़ाई से पकड़ा है और पांव भी सटा दिए हैं कि वो छुड़ा नहीं पा रही है, मोंचा रे मर गई रे, अरे क्या रे, वो छोड़ अभी कभी नहीं आऊंगी, तड़पने लगी, ऐसा हाथ से मारने भी लगी, छोड़ रे, क्या वो छुड़ा नहीं सकती थी, छुड़ा सकती है, लेकिन अब कृष्ण ने पकड़ा है, कृष्ण नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छुड़ा पाई, मर के गिर गई, उसकी आंखें बाहर उल्टी हो गई, जो आंखें थी बिल्कुल उल्टा हो गया डोला, और मर गिर गई बाहर गई, और दौड़ते, अरे मुंचा, ऐसा जानती तो मैं इधर नहीं आती थी, मार डाला रे मुको, मार डाला, मुंच छोड़, अरे छोड़, ऐसा किया, लेकिन वो छोड़, पूतना इतनी शक्तिशाली 6 दिन के कृष्ण को छुड़ा नहीं पाई। और त्रिणावत भी, कृष्ण जब भारी हो गए तो अब उससे उठाए नहीं जा रहे, वो आकाश में चला गया, उठाए नहीं जा रहा है अभी, कृष्ण इतना भारी हो गया, तो अब उसने तो, त्रिणावत ने तो छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका गर्दन पकड़ लिया, तो वो छुड़ाना चाहता था, उसका जीवा बाहर निकल रहा है, उसका प्राण निकल रहा है, और वो इतना शक्तिशाली असुर जो बवंडर के रूप में आया तो पूरा ब्रज में बवंडर मचा दिया था, लेकिन वो त्रिणावत भी वो कृष्ण को छुड़ा नहीं पाया, कृष्ण ने पकड़ लिया और उसके प्राण निकल गए, और गिरे तो दोनों साथ में गिरे, पकड़े ही गिरा, लेकिन वो कृष्ण को छुड़ा नहीं पाया। उस समय भी कृष्ण 3 मास के थे, कितना मास के थे ये चक्टा त्रिणावत, 3 या 6 मास के थे, लेकिन अभी से तो छोटे हैं, दामोदर लीला से तो बहुत छोटे, तो त्रिणावत जैसा शक्तिशाली असुर, पूतना जैसी शक्तिशाली असुरनी कृष्ण को छुड़ा नहीं पाई, लेकिन वह माता यशोदा एक झटके में कृष्ण नहीं छोड़ना नहीं चाहते थे, आप मालूम है ना, फिर कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, हमको बिठा दिया, हम अभी तृप्त नहीं हुए हैं और हमको गोद में से बिठा दिया, अरे हम बैकुंठ छोड़कर ये प्रेम पीने के लिए यहां आए और यहां हमारा कोई वैल्यू नहीं। कृष्ण बहुत क्रोधित हुए, काम हुआ, लोभ हुआ, क्रोध भी हुआ, अरे ऐसा कैसे हुआ, तो लेकिन माता यशोदा ने एक झटके में बिठा दिया, कैसे हो सकता है, माता यशोदा को कोई शक्ति नहीं लगाना पड़ा, कोई कह छोड़ रहे गोद में से उठ रहे, कुछ नहीं, यशोदा ने कहा उठाया और बिठा दिया, और कृष्ण बैठना गोद छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छोड़ के बिठा दिया, पूतना को छोड़ना नहीं चाहते थे, पूतना नहीं छुड़ा पाई, त्रिणावत नहीं छुड़ा पाया, लेकिन माता यशोदा एक झटके में कैसे बिठा दिया और चली गई, कितने अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत लीला, हर जगह पकड़ने में भी बांधने में भी वो अजीत है, उनको कोई बांध नहीं सकता, उनको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन माता यशोदा ने पकड़ लिया। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि इस लीला हरिणा एवं समदर्शिना हरिणा भृत्य वश्यताम। सुखदेव गोस्वामी इस लीला का सार देते हुए बताते हैं, एवं समदर्शिना हरिणा भृत्य वश्यताम। कृष्ण ने ये दामोदर लीला द्वारा समदर्शिना दिखाया, सबको दिखाया, विशेषकर भक्तों को भी दिखाया। क्या? हरिणा भृत्य वश्यताम। हरि भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह दिखाया कि देखो भक्ति में कितना शक्ति है, भक्ति में कितना शक्ति है। पूतना नहीं बिठा सकी, लेकिन यशोदा ने बिठा दिया भक्ति, और वो भी प्रेम भक्ति, भाव भक्ति। यहां पर यह बिताया दिखाया जा रहा है कि जो प्रेम भक्ति करते हैं, वैसे तो जो कोई भी कृष्ण का भक्ति करता है किसी भाव से, वास्तव में वो उसका फल प्राप्त करता है, कृष्ण संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्या या चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो आरती अर्थार्थी जिज्ञासु, कोई किसी धन के कारण कृष्ण के पास आता है, कोई किसी दुखी के कारण या किसी भी हेतु से कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान इस लीला में यह बताते हैं कि जो प्रेम भक्ति करता है, भाव भक्ति करता है, मैं उसके वश में हूं। तो प्रेम भक्ति जो करते हैं उनके वश में हो जाते हैं, बाकी जो भक्ति करते हैं तो उनसे संतुष्ट तो हैं लेकिन वश में नहीं होते, संतुष्ट होते हैं वश में नहीं होते। अर्जुन का जब रात हाँकते थे तो सामने पक्ष के लोग उनका हंसी उड़ाते थे, ऐसा हमने एक भक्त से सुना कि ये दुर्योधन इत्यादि है, ये क्या कृष्ण यार, वहां तो द्वारकाधीश बना हुआ है, जाए द्वारकाधीश, और इधर ये तांगे वाला बन गया, ये क्या रथ चलाता ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन अभक्त इस बात को नहीं समझ पाते हैं। एवं समदर्शन ये भक्तों को ही बता रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति में है उनको, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको रास्ता दिया है, रम्य काचिदा उपासना व्रज वधू वरगेण यो कल्पिता, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण का प्रेम रूपी भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, ये विशेष भक्ति तो था पहले भी, भक्ति तो बार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में या गौड़ीय परंपरा में तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भक्ति है और बाहर जो भक्ति है उसमें बहुत अंतर है। यहाँ जो भक्ति दिया जाता है प्रेम भक्ति या भाव भक्ति, कृष्ण के साथ अपने भाव को जोड़कर, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण हमारे पति हैं, कृष्ण हमारे फ्रेंड हैं, ये भाव के साथ जब भक्ति किया जाता है भृत्य वश्यता वो भक्त, तो ये बहुत सुंदर अद्भुत। चलिए हम आज के पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। आज का जो श्लोक है उसमें इस बात का सार दिया गया है, इस बात को भी बताया गया, इसलिए ये मैंने, तो आइए श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 6 का आज अंतिम श्लोक है। पूतना वध का यहाँ पूर्णाहुति हो रहा है, लेकिन हर पूर्णाहुति में इसका सार दिया जा रहा है। तो आइए श्लोक संख्या 44। यः एतत् पूतना मोक्षम् कृष्णस्य आर्भकम् अद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मृत्य गोविंदे लभते रतिम्। यत्पूतना मोक्षम् कृष्णस्य अभर्क अद्भुतम् कृष्णस्य अभर्कम् अद्भुतम् शृणयाच श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम य एतत् पुतना मोक्षम कृष्णाय अभर्कम अद्भुतम शृणयाच श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अभर्कम अद्भुतम शृणयाच श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम ये तत्पुतना मोक्षम कृष्णार्थकम अद्भुतम गोविंदे लभते रति य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अभर्क अद्भुतम शृणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते माताजी माताजी य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अभर्कम अद्भुतम शृणयाच श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम या जो व्यक्ति जो कोई एतत् यह पूतना मोक्षम पूतना का मोक्ष कृष्णस्य कृष्ण का आभार्कम बाल लीला अद्भुतम अद्भुत विलक्षण दिव्य शृणुयात सुने श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक मृत्य इस लोक का कोई भी व्यक्ति गोविंदे आदि पुरुष गोविंद के प्रति लभते पाता है रतिम अनुरक्ति या प्रेम। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की। ऐसा हमने सुना है कि दसवां स्कंद का 13वां अध्याय तक प्रभुपाद महाराज ने तात्पर्य लिखा, उसके बाद उनके शिष्यों ने लिखा, लेकिन 13वां अध्याय तक, ये 6ठा अध्याय। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को सुनने में अपने को लगाता है, उससे नीचे ही आदि पुरुष गोविंद के प्रति अनुरुक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य, यह घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई, नीचे ही अद्भुत है। इसलिए इस श्लोक में अद्भुत शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है विशेष रूप से आश्चर्यजनक। कृष्णा अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए हैं। कृष्णा नामक ग्रंथ में इन कथाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेता है। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवमीष्टं स्थापितं येन भूतले ब्रह्म रूपं कदा मह्यं ददाति सपदं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवं च श्री रूपं सद्विजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखां हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे आराध्य भगवान व्रजे तनयस्तधाम वृंदावनम रम्य काचिदावासना व्रजवधूवर्गे युकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणामलम प्रेमापुमर्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभुमतैदं तत्रादरो न परा हरे कृष्णा। तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं महाराज परीक्षित की जिज्ञासा, विशेष जिज्ञासा इस दशम स्कंद के प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित ने किया, क्योंकि अब उनके चार दिन व्यतीत हो चुके हैं और तीन दिन बाकी थे। तो अब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से आग्रह किया कि अब कृष्ण की लीलाओं को ही हमें सुनाएंगे और इस लीला में कुछ पांच प्रश्न पूछे गए थे। पहला ही प्रश्न था कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान बलराम जो शरीर बदली किए बिना दो माताओं के पुत्र बने, कुतो देहांतर बिना, ये कैसे हो सकता है ये बताइए। फिर कृष्णा ने मथुरा में वसुदेव जी और देवकी के यहाँ जन्म लिया और अपने पिता का घर छोड़कर व्रज क्यों चले गए, गोकुल क्यों चले गए, और गोकुल में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की ये बताइए। और फिर गोकुल से वापस मथुरा आए, उन्होंने अपने मामा का उत्तम वध क्यों किया, शास्त्र ऐसा वध का निषेध करता है। फिर वो द्वारिका में गए, द्वारिका में अनेक पत्नियों से विवाह किया और किस प्रकार विवाह ग्रस्त जीवन किया। ये जो मैंने प्रश्न किए हैं उनको कृष्ण की लीला का इसको मुझे बताइए, और मैंने पूछने में अगर कुछ बाकी रह गया है वो भी बताइए। इससे पता चलता है कि महाराज परीक्षित का कृष्ण कथा के प्रति कितना अनुरक्ति था, कितना अनुराग था। सब कुछ पूछा, इन पांच प्रश्नों में पूरा आ गया, लेकिन जो मेरे से कुछ चूक भी गया तो वो भी बताइए। ये इस प्रकार सुनकर महाराज सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए थे। ये जो कृष्ण के अवतार की कथा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। यही जिज्ञासा मैत्रेय जी से विदुर जी ने किया, तीसरे स्कंद में हम पढ़ते हैं। विदुर जी ने यही जिज्ञासा मैत्रेय जी से किया कृष्ण अवतार कथा का। तो जब जिज्ञासा किया तो उसके मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उसका सार देते हुए विदुर जी से कहते हैं, है, साधु वीरम त्वया पृष्टम अवतार कथा हरे। साधु वीर, हे साधु, हे भगवान कृष्ण के भक्त, आपने, आप वीर हो। वास्तव में भक्ति करना वीरों का काम है। यहां जो बैठे हैं सब सूरवीर हैं, है, वीरों के बिना भक्ति, माया के साथ फाइट युद्ध करना है, देश के साथ, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना, इतना वीरों का काम है, बहुत है। लेकिन माया के साथ है, लोग बड़े बड़े देश जीत लेते हैं लेकिन माया को जीत वहां फेल हो जाते हैं। तो वास्तव में वीर वो हैं जो माया के साथ युद्ध करते हैं। ये भक्ति मतलब सीधा माया से वॉर है। तो साधु वीरम त्वया पृष्टम, आपने पूछा है, क्या पूछा है, अवतार कथा हरे, उन हरि की ही अवतार की कथा और लीला के बारे में पूछा है। यस, और उसका सार बता रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है। तो कहते हैं, यस प्रच्छस्य मृत्यानाम मृत्युपास विषातनी, उन भगवान कृष्ण के अवतार की लीला कथाओं को सुनने से मृत्युपास में बंधा हुआ ये जीव अपने मृत्युपास से, भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्युपास विषातनी, अपने मृत्युपास को का विनाश कर देता है। कृष्ण की कथा श्रवण करने की अगर हमारे हृदय में लालसा है तो हमारा भव बंधन नष्ट हो जाता है। त्यक्त्वा अन्धे पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, मात्र मेरे जन्म और कर्म लीला को ठीक ठीक अगर कोई समझ ले, अरे वो मुक्त हो जाता है। नैति मामेति, उसका दूसरा जन्म नहीं होता तो मामेति, वो मुझको प्राप्त कर लेता है। तो इसी बात को कहते हैं मृत्यु पास विषातन, वो मृत्यु को जीत लेता है या मृत्यु के पास को काट देता है। हाँ, अरे काट क्या देता है, मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा बता रहे। अच्छा, ऐसा कोई इतिहास है? तो मैत्रेय जी कहते हैं, ययो उतान पाद पुत्रो मुनि ना गीतया अभर्क, यहां भी अभर्क शब्द आया, इसमें भी अभर्क शब्द, अभर्क मतलब बाल बच्चा, यहां अभर्क बाल लीला, तो अभर्क मतलब बाल। कौन? उतानपाद का पुत्र ध्रुव, जो भी बालक था। ययो उतानपाद पुत्रो मुनिना गीतया अभर्क, गीतया, गीतया गीत, ये भगवान का गीत लीला। उस उतानपाद के पुत्र ने, बालक ध्रुव ने मुनिना नारद मुनि से ये कृष्ण कथा को सुना था, कृष्ण कथा के विषय में जिज्ञासा की और उनसे सुना, जिससे क्या हुआ, मृत्योकर्त्वेन मूर्धन्य, मृत्योकर्त्वेन मूर्धन्य अंगद्रि आहरुहम हरे पदम, अंगद्रि आहरुहम हरे पदम। उस उतानपाद के पुत्र बालक ध्रुव ने नारद मुनि से कृष्ण कथा को सुना और जिससे वो मृत्यु, मृत्योकर्त्वेन, जो मृत्यु सबको मार देती है, उस मृत्यु के मूर्धन्य, मूर्धन्य कहते हैं मस्तक, उस मृत्यु के मस्तक पर अंगध्री, अपने अंग को रख कर, मतलब उस मृत्यु के माथे पर पांव रख कर हरे पदम, हरि के पद को प्राप्त कर लिया। ना किसी ज्ञानी का ऐसा इतिहास है, ना किसी योगी का, और किसी भी साधक का ऐसा नहीं देखा जाता। कि मृत्यु के माथे पर पांव रख के चला जाए। जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए भगवत धाम से विष्णु दूत आए विमान लेकर, आजकल के पढ़े लिखे लोगों या किस लोगों को कहते हैं तो ये तो सब अंधविश्वास की कथाएं। ये कथाएं बिल्कुल परम सत्य हैं। जैसे सूर्य में प्रकाश है ये परम सत्य है, उसमें अंधेरा नहीं हो सकता, ये सत्य है। ऐसा से इससे भी बढ़कर ये परम सत्य है कि ध्रुव महाराज को लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया। कुछ लोग कहते किसने देखा था, अभी अभी 500 वर्ष पूर्व तुकाराम महाराज को लेने के लिए विमान आया था। अब उसको नहीं देखा तो इसको तो देखा है ना, कि ये भी गलत है। कोई कह सकता है कि ये गलत बात है? तुकाराम महाराज को वो स्थान भी है आज भी जहां विमान आया था, और विमान में बैठने के पहले तुकाराम ने सबको बोला किसी को आना है, कोई तैयार नहीं हुआ, हमारे बेटे का शादी है, हमारी बेटी का ऐसा है वो है, हमारा खेत में थोड़ा बोया हुआ है। उनको पत्नी से कहा अरे हमारी गाय कौन घास पिलाएगी। ये इसके विषय में एक नारद जी का बहुत सुंदर कथा है, कैलाश का कथा आपने सुना। वो कुत्ता बनकर द्वार पर बैठ गया, नारद जी ने कहा अब भी ले जा सकता हूँ अगर आना है तो। कुत्ता बन गया वो कैलाश आदमी था, लेकिन नारद जी बोला आता हूँ घर का काम है, पत्नी है, अभी पोते हो गए हैं, अभी पोतों को शादी करना है। नारद जी बार बार आते रहे लेकिन वो हाँ आना है, लेकिन ये पोते का एक शादी हो जाए ना। वो कुंवारा था तब से नारद जी उसके पास आए, आना है बोला हाँ आना है, लेकिन कुछ दिन बाद शादी कर लिया, फिर आए अरे मेरी पत्नी गर्भवती है, इसके एक बच्चा हो जाए फिर आ जाऊंगा। बच्चा हो गया, बोला बच्चा पापा पापा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया आए बोला शादी, सगाई कर दिया, अब शादी है, अभी 19 तारीख को शादी है करके आ जाऊंगा, शादी हो गया। बोला एक बार पोते का मुंह देख लूं बस नारद जी। नारद जी ने सोचा ठीक है भाई, पोते का मुंह देख आने की इच्छा है ना, इसलिए मैं आऊंगा। कुछ दिन बाद नारद जी आए तो बंगले के बाहर आए तो कुत्ता एक भौंक रहा था नारद जी को। नारद जी ने कैलाश तुम, अरे क्या हुआ? बोला मर गया, कुत्ता बन गया। अरे कुत्ता तो कुत्ता, मेरे में शक्ति है, तेरे को अभी भी ले जा सकता हूं वैकुंठ। ये क्या थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद शिवानंद सेन, उनके कुत्ते को भी भेज दिया ना। नारद जी भक्तों में बहुत शक्ति है, वैष्णव का शक्ति हम नहीं जान सकते कि एक वैष्णव में कितना शक्ति होता है। कल कुमदास प्रभु बता रहे थे वैष्णव का शक्ति, कि ये प्रभुपाद जिन ब्रिटिश ने पूरे विश्व को नचाया है ना, पूरे विश्व पर ब्रिटिशों का राज था, जिस ब्रिटिशों ने पूरे विश्व को नचाया उन ब्रिटिशों को प्रभुपाद जी ने नचाया। ये वैष्णव का शक्ति, जिस ब्रिटिश ने पूरे विश्व पर शासन किया प्रभुपाद जी ने उन पर शासन किया, धोती पहनो, चोटी रखो, तिलक करो, कीर्तन करो, उन्होंने तो जबरदस्ती ली, इन्होंने तो प्रेम से जीता। तो वैष्णव में बहुत शक्ति होता है, एक वैष्णव पूरे विश्व का उद्धार कर सकता है। भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवान के भक्त में होता है। ऐसा बताया गया कि राम को जब लंका जाना था तो सेतु बांधना पड़ा और हनुमान जी कूद कर चले गए। बहुत शक्ति होता है। तो नारद जी ने कहा कुत्ता तो कुत्ता आप भी ले जा सकता हूं, तो वो नारद जी ने थोड़ा कृपा किया तो वो उसका वांछा खुला। नारद जी आना तो है, लेकिन ये पोते लोग हैं बंगले का दरवाजा खुला रखकर छोड़ जाते हैं, उनकी रक्षा कर रहा हूं मैं। ये थोड़े अक्कल आ जाए, उनको बुद्धि आ जाए और बंद करने लगे तो फिर तो बस आना ही है, मरो। कुत्ता बन जाने को तैयार है, लेकिन कहते हैं कृष्ण कथा से मृत्यु कर्तवेन मूर्धन्य अंग धरी आरुहम हरे पदे, उस मौ जब वैकुंठ से विमान आया तो विमान आकाश में खड़ा था, ध्रुव महाराज नीचे खड़े थे, और जो विष्णु पार्षद थे ध्रुव महाराज को कहा आ जाओ, तो ध्रुव महाराज को विमान में चढ़ना था, उसके पहले दोनों के बीच में मृत्यु साक्षात आकर खड़ा हो गया। बोला इस शरीर पर हमारा अधिकार है, ये शरीर लेकर कोई नहीं जा सकता, आप जाओ वैकुंठ, लेकिन शरीर इधर, शरीर मुझको देकर जाओ। लेकिन विष्णु दूत कर आ जाओ, कम ऑन। तो ऐसे भी चीड़ी नहीं था चढ़ने के लिए, उस मृत्यु के माथे पर पांव रखा और वो विमान में चढ़ गए। मूर्धन्य अंग ध्रुव आरुहम, अंग ध्री अपने अंग को रखा और विमान में चढ़ गए, हरे पदम, हरि के पद को प्राप्त कर लिए। कृष्ण कथा ययो उत्तपाद पुत्रो मुनिना गीतया, इस कृष्ण कथा का इतना प्रभाव है कि अगर उसको कोई लालसा करे सुनने की तो वो मृत्यु के पास को जीतना, मृत्यु को परास्त करके चला जाता, ये कृष्ण कथा कहता है। तो इसी कृष्ण कथा को जब मैत्री मुनि ने प्रारंभ किया तो मैत्री मुनि कहते हैं, सो अहम नृणा शुक्लम सुखाय दुखम। एक विदुर जी का प्रश्न है तीसरे अध्याय में कि इस संसार के लोग सुख के लिए कार्य करते हैं, उनको दुख क्यों मिलता है। तो ये हम बता रहे हैं कि सो हम नृणा शुल्ल सुखाय दुखम, वो शूद्र सुख, वो सुख जो एक सुअर को भी प्राप्त है, उस शूद्र सुख को प्राप्त करने के लिए ये जीव दुख उठा रहा है। कितना सुंदर बात है भागवतम, सो हम नृणा शुल्ल सुखाय दुखम महद गताना विरमाय तस्य प्रवतय भागवत पुराण। उन जीवों को के कल्याण के लिए, उन जीवों के मंगल के लिए अब मैं ये भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं कहना। ऐसे जीव जो सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन दुख के सिवा उनको कुछ मिलता नहीं है, अगर ऐसे जीव इस कृष्ण कथा को सुने तो उनका मंगल हो सकता है। उस मंगलमय कथा को मैं, हे विदुर जी, अब प्रारंभ करता हूं, भागवत पुराण को अब कहना प्रारंभ करता हूं। और इस प्रकार कहकर भागवत पुराण को प्रारंभ करता हूं। ये बात यहां भी इस श्लोक में भी कहा जा रहा है, यह एतन पूतना मोक्ष। सुखदेव गोस्वामी अब पूतना की कथा कहकर अब इसका सार बता रहे हैं। ये जो कथा, पूतना की कथा अगर हम सुनते हैं तो इसका सार बता, हर अध्याय में सार दिया गया है। और हम लोग भी कुछ ऐसे लोभी हैं कि अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो ये जिज्ञासा, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा भाई, हर काम में हमारा ये स्वभाव पड़ गया है। ये तो इसलिए ये एडवर्टाइज करने वाले भी बेनिफिट बता ले, वो बिल्कुल भद्दा और गलत बेनिफिट बताते हैं। लेकिन यहाँ जो बेनिफिट बताया वो परम सत्य है। कुछ वस्तु किसी को बेचना है तो उसका बेनिफिट है, चुटकी में कुछ भी नहीं होता है चुटकी में, लेकिन यहाँ जो बताया गया बिल्कुल परफेक्ट बताया, बिल्कुल परम सत्य कि अगर कोई एतत अभी अभी जो कहा, जो अभी अब आज तक आपने सुना पूरा पूतना मोक्ष का कथा, एतत इस कथा को, कौन सी कथा, पूतना मोक्ष, पूतना के मोक्ष की कथा है। कृष्ण से अद्भुत अभर्क, ये कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत कथा है। ये कृष्ण ने जो बाल लीला किया है उसका ये बहुत ही अद्भुत कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनकर इसका मनन किया होगा, बहुत अद्भुत, वास्तव में अद्भुत है, विलक्षण है, दिव्य है, बहुत विलक्षण कथा है ये। ध्यान दीजिए, हाँ, इस पर आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। और ये कथा ऐसी है, ये कथा ऐसी है कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी इस कथा का सार बताते हुए बताते हैं। टाइम तो बहुत नहीं हो गया है अभी प्रारंभ। सनातन गोस्वामी कहते हैं इस पूतना मोक्ष की कथा का सार देते, जैसे सुखदेव गोस्वामी देते हैं, कहते हैं कि आरंभाय देव लीलाया, आरंभाय देव लीलाया, लीलाया आरंभाय, आरंभ में ही, अपने बाल में ही, बचपन में, 6 दिन के थे अभी कृष्णा, अभी अभी ये लीला प्रारंभ हो रही है। अब कृष्ण लीला प्रारंभ कर रहे हैं। तो आरंभाय देव लीलया, देव ने, कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक लीला में ही ऐसा लीला किया, ऐसा लीला किया। कौन सा लीला? बकी धात्रे गति प्रदा, बकी, बकी बकासुर की बहन, बकी अधासुर की बहन थी, बकासुर, ये दोनों भाई थे और ये एक बहन थी। और कृष्ण लीला की अद्भुतता देखिए, ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं एक प्रार्थना में, सकुला सकुला, मतलब पूतना का भी मोक्ष किया, बकासुर का भी मोक्ष किया, अधासुर का भी उद्धार किया, सकुला, पूरे कुल का उद्धार किया सकुला। और कैसा कुल था ये? कुल कैसा था? राक्षसी कुल, बहुत ही जघन्य, ये जिंगा सया उसकी, और जिंगा सया कृष्ण को मारने की इच्छा, और मारने की भी कैसे, विष देकर, और विष भी कैसा, दुर्जर उल बना। माए होती हैं अभी आजकल तो ये बात शायद प्रभाव ना करे समाज में, लेकिन भक्तों, स्त्री के हृदय में भले कितना भी कपट हो, कैसी भी स्त्री हो, लेकिन बच्चे के प्रति उसका इतना क्रूर स्वभाव नहीं होता है, किसी भी बच्चे के प्रति। स्त्री का कभी, कम से कम जो बालक है, बच्चा है, उसको जहर देकर मार देना, ये माता के, स्त्रियों का ये स्वभाव हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। आजकल ये लगता है, आजकल तो माँ अपने बच्चे को मार देती है, ये क्या कली आ गया या क्या लोगों को हो गया, बहुत विचारणीय बात है। लेकिन कहा आचार्य ने कि भाई स्त्री के, स्त्री भी है और वो बच्चे को मार दे, और वो भी जहर देकर, और वो भी जहर कैसा, दुर्जर और उल्बण, ऐसा उस जहर का नाम दिया गया है भागवत में। दुर्जर का अर्थ होता है, जर का अर्थ आप जानते हैं, जीर्ण, जीर्ण मतलब शक्ति है, आदमी बुढ़ा होता है तो उसको जर कहते हैं, जरा कहते हैं, जरा अवस्था, जरा मतलब शक्ति क्षीण हो गया, बुढ़ापे ने उसका सारा बॉडी बॉडी सब खत्म कर दिया, रूप बूप सब, अब पहले जो ऐसा ऐसा करता था अभी त्रिपाद लो दूर, जर, जर का अर्थ है उसके शक्ति को या प्रभाव को कम कर, जीर्ण कर देना। लेकिन यहां लिखा गया है दूर जर, मतलब उस जहर के प्रभाव को किसी भी वस्तु से कम नहीं किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि अब सांप काटा है, कुछ इंजेक्शन दे दो तो ये बच जाएगा, ऐसा होता है ना, कभी कभी जहर पिया है तो उसका कुछ दूसरा वस्तु दिया जाता है तो वो जहर उतर जाता है। लेकिन ये जो जहर था, ये दुर्जर, किसी भी दवा से, किसी भी मंत्र से, किसी भी प्रयास से उस जहर के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता था, इसलिए दुर्जर। और उल्बण, उल्बण का अर्थ है जैसे ही वो चखा मरा, उसका प्रभाव इतना कालकूट जहर, वो बस उल्बण मतलब उसका प्रभाव ऐसा था कि बस लेगा तो मरेगा ही, तुरंत मारेगा, ये चखते ही मर जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा हॉस्पिटल ले जाएंगे और नहीं, चखते ही मर गया। तो ऐसा कालकूट जहर लेकर वो पूतना आई थी, लेकिन उसको बकी धात्रे गति प्रदा, कृष्ण ने इस आरंभिक लीला में ही, आरंभिक लीला, अभी लीला का प्रारंभ करते हैं, उस लीला में ही उस बकी को धात्री गति का प्रदान करके, ये ऐसी लीला कथा करके, ऐसी लीला करके क्या किया, कृष्ण स्वगुणे, कृष्ण ने अपना गुण, अपना स्वभाव प्रकट करके, बचपन में ही, बाल लीला में ही अपना स्वभाव प्रकट करके, माधुर्य तृष्णाय मास वैष्णवाना, इन वैष्णवों को, इन भक्तों को कृष्ण कथा का तृष्णा, तृष्णा जगा दी, अंदर बिल्कुल उत्कंठ लालसा जगा दी कि अरे कृष्ण का ऐसा स्वभाव है, अरे बाप रे, सुनने अभी कृष्ण कथा को सुनने के लिए अंदर एक लालसा हो गई, तृष्णा हो गई, प्यास बढ़ गई। वैष्णवा नाम, इन वैष्णवों की प्यास को बहुत बढ़ा दिया। शुरू में ही ऐसा लीला किया कि वैष्णवों का प्यास बढ़ गया। वास्तव में शुरू में ऐसा लीला किया। कैसा लीला किया? उस ओहो बकियम स्तन काल कूटम झिंगा सयावद असाध्वी असाध्वी थी। हाँ, उद्धव जी भगवान के उस गुण को याद कर रहे हैं। भगवान जब चले गए उसके बाद उद्धव जी विदुर जी मिले तो उद्धव जी जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो उस लीला का स्मरण किया। ओहो बकियम स्तन काल कूटम, उन कृष्ण के स्वभाव का गुण का क्या वर्णन किया, कैसा उनका स्वभाव था है? वो पूतना, वो बकी, बकासुर की बहन बकी, जो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा कर लाई थी। और क्यों आई थी? झिंगा सया, उस बच्चे को मारने का हेतु लेकर आई थी। और यावत असाध्वी, और वो असाध्वी थी, असाध्वी का राक्षसी थी, वो कोई साधु नहीं थी, उसमें कोई भी सद्गुण नहीं था। उसका भावना बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही थर्ड क्लास भावना था, और राक्षसी जाति की थी। और राक्षसी जाति में भी ये पूतना भी एक एक जाति है, जो बच्चों को मारने वाली जो जाति है उसमें, उसको पूतना जाति कहते हैं। तो उसको उस जाति का नाम मिल गया, पद मिल गया, मतलब ये इतनी एक्सपर्ट थी उसमें, ये बच्चों को मारने में ये लीडर थी, मतलब बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए उसका नाम ही पूतना पड़ गया है, राक्षसी जाति की। और राक्षसों में भी एक पूतना जाति है, राक्षस से राक्षस बने। ये कथा आता है ना ब्रह्मा जी के, वो जब यक्ष मारने के लिए दौड़े, मारो मारो मारो, तो राक्षस एक जाति ने कहा रक्षा माम, उसको रक्षा नहीं करना है, रक्षा नहीं करना है। तो ये दो जातियां पड़ी, यक्ष और रक्ष, और ये रक्ष राक्षस से जो आए वो राक्षस। तो ये राक्षस जाति की थी, कुल भी बिल्कुल बेकार है, और उसके इच्छा इतनी बेकार है कि बात छोड़िए। तो ऐसी बकी को भगवान ने धात्री गति प्रदान किया। तो बचपन में ही इस कृष्ण ने ऐसा लीला किया जिससे कृष्ण स्वगुणे माधुर्य, माधुर्य ये माधुरी अपनी मधुरता, ऐसी लीला अपनी स्वभाव का माधुर्य इस प्रकार से प्रकाशित किया। आरंभ में ही, स्टार्ट में ही छक्का मारना चालू, सिक्स बस, दूसरा कुछ ये तो कोई पहले गेंद में सिक्स मार दे दूसरे में भी ना, तो आदमी फिर मैच को छोड़ता नहीं है, बैठ जाता है, अरे ये खेलेगा। तो शुरू की लीला में ही ऐसी राक्षसी को अपना माधुर्य प्रदान किया कि है कृष्ण स्वगुणे माधुर्य तृष्णाया, तृष्णाया तृष्णा, कृष्ण कथा सुनने की लालसा प्यास है, तृष्णाया मास वैष्णवाना, इन वैष्णवों की कृष्ण कथा सुनने की जो तृष्णा है उसको बहुत बढ़ा दिया, बहुत प्यासा बना दिया। अरे भागवत सुनना है, भागवत कहाँ है, वहां है, चलो दुकान बंद करो, चलो भाई वहां चलो, वहां चलो, संडे का भागवत क्लास, चलो चलो। ये वैष्णवों की तृष्णा को बढ़ा दिया। कृष्ण ने शुरू में ही ऐसा लीला किया। हाँ, इसी को कहते हैं यह एतत् पूतना मोक्षम। इस पूतना मोक्ष की कथा कृष्ण शा अभर्क अद्भुतम, ये कृष्ण की बाल लीला की अद्भुत कथा है, अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत लीला। ब्रह्मा जी ने भी अपनी प्रार्थना में ये कहा, और हमारे आचार्यों ने भी इस लीला पर बहुत मंथन किया, बहुत मंथन किया। इस प्रकार के अगले श्लोकों में भी कहा कि वो पूतना जो कृष्ण को मारने के हेतु से आई, कृष्ण को मारने के हेतु से उसने जहर दिया, उस पूतना को मात्र का गति, धात्री गति प्राप्त का धात्री गति कृष्ण ने दिया। ध्यान दीजिए, वह पूतना जो राक्षसी थी, असाध्वी थी, और कृष्ण को झिंगा सया, कृष्ण को कालकूट जहर दिया मारने के लिए, उस पूतना को कृष्ण ने मात्र गति प्रदान, वह गति प्रदान दिया माता का गति। तो अब सब विचार कर रहे हैं कि जब ऐसी पूतना को माता का स्थान दिया तो वो लोग जो ब्रजवासी गण या वो लोग जो कृष्ण को इस प्रकार प्रेम से अपना पुत्र मानकर अपना सब कुछ मानकर जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं उनको कृष्ण क्या देंगे, उसको क्या देंगे? ये बहुत विचारणीय बात है। जब पूतना को माता का अपना पार्षद बनाया, धात्री गति दिया, स्वर्ग लिखा गया, स्वर्ग का अर्थ होता है जहां विपुल मात्रा में सुख, वैकुंठ को भी कभी कभी स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वहां बहुत सुख है, वहां सुख ही सुख है और स्वर्ग में भी थोड़ा सुख है, तो स्वर्ग वैकुंठ को भी कहा जाता है। तो वो स्वर्ग दिया और उसमें भी जननी गति मतलब मात्र धात्री की गति प्रदान किया। तो ऐसी पूतना को जब धात्री गति प्रदान किया तो जो मां बनकर प्रेम से और अपना सर्वस्व मानकर प्रीति पूर्वक जो उनकी से उनको प्रदान करते हैं तो उनको क्या गति दी? और इसको एक हमारे आचार्य कहते हैं इस न्याय को कौमुतिक न्याय, कौमुतिक न्याय द्वारा इस बात को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि और भक्ति उत्कर्ष का वर्णन है इसके द्वारा कि भक्ति कितना श्रेष्ठ है। कौमुत्य न्याय कहते हैं इसको, कौमुत्य किम उत्य, अरे उनको क्या मिलेगा, किनको? या कहते हैं किम उत, अच्छा कोई व्यक्ति ऐसे ही कृष्ण को आया दर्शन करने के लिए और कुछ फल आया और दे दिया, इधर ये कृष्ण का है कृष्ण को अर्पण, ऐसा ही दे दिया, कुछ जप वप नहीं लेकिन ऐसा ही दे दिया, तो उनको क्या मिलेगा, उनको कृष्ण क्या देंगे? जो जहर दे रही है उसको माता बना रहे हैं, तो जो ऐसे ही लाकर कुछ इधर रखता है ऐसी वस्तु जो कृष्ण को नुकसान करने वाली नहीं है, कृष्ण को मारने वाली वस्तु है, उसको लिए तो कृष्ण ने मात्र का गति प्रदान किया, लेकिन जो कुछ लाकर ऐसे ही फल या केला लाकर रख दिया तो उसको कृष्ण क्या देंगे? जहर देने वाले को ये देते हैं तो खाली ऐसा ही कोई वस्तु भेंट कर देता है उसको क्या देंगे? किमूता फिर कहते हैं, ये कौमुतिक न्याय देखिए, फिर कहते हैं किम उतर उनको क्या देंगे, और दूसरा किम उतराम, किम उतराम, किम उतरा मतलब श्रद्धा पूर्वक कृष्ण को देना चाहिए, कृष्ण को देने देना ही मेरे जीवन का कर्तव्य है, हमारा जीवन है मनुष्य, कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, और इस प्रकार श्रद्धा के साथ भगवान को देने से निश्चित हमको पुण्य मिलेगा, निश्चित हमारा मंगल होगा। इस प्रकार श्रद्धा से जो देते हैं तो उनको क्या देंगे, उनको क्या देंगे? जहर देने वालों को माता का स्थान दिया, तो जो ऐसे ही उदासीन भाव से मतलब कोई लोग नहीं ऐसा ही दे दिया कि चलो कृष्ण को है भगवान है उनको फूल अर्पण करो, एक फूल दे दो या कुछ फल दे दो, तो उनको क्या देंगे? अच्छा फिर उतरम, किम उतरम उससे मतलब श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ नहीं कृष्ण को अर्पण किया, जिन्होंने कृष्ण को थोड़ा भी अर्पण किया उनको बहुत बहुत मिला, हमको भी देना चाहिए, और इस प्रकार श्रद्धा के साथ कुछ देते हैं तो उनको कृष्ण क्या देंगे? और किम उत्तमाम, किम उत्तमाम का अर्थ है बहुत ही प्रिय वस्तु, अब हमारी जो प्रिय वस्तु है जो हमको प्रिय, कभी कभी हम देखते हाँ ये बहुत अच्छा, बाजार में गए हाँ ये एप्पल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पक्का है और वो बैठता है 100 रुपये किलो लेकिन बहुत मीठा है, तो बोला इसको कृष्ण के लिए, चलो बहुत मीठा है हाँ तो कृष्ण के लिए ले लो। इस प्रकार प्रिय और उत्तम वस्तु, या कुछ माताएं देखती हैं लल्ला उसको मक्खन बहुत अच्छा लगता है तो रात्रि भर बनाकर मक्खन बनाकर रखती हैं और सुबह देती हैं, तो उनको क्या देंगे, उनको क्या देंगे? कोई व्यक्ति साधारण वस्तु उत्पन्न करता है कि मुद्दा, फिर किम उत्तराम, किम उत्तमाम, और इससे भी ऊपर किम प्रियतमाम, प्रिय वस्तु को कोई ऐसे ही दे देता है, मंदिर जा रहे हैं चलो एक फूल या केला लेकर जाए, उनको क्या देंगे? फिर कोई श्रद्धा के साथ अर्पण करता है उनको क्या देंगे, और जो कोई प्रेम के साथ अर्पण करता है उनको क्या देंगे। कितना विचार नहीं पसंद शुरू में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण ये विचार करके कि कृष्ण तुम कुछ नहीं दे सकते इनको ब्रजवासियों को, तुम इनके गुलाम बनकर रहोगे और कुछ नहीं दे सकते। जब पूतना जहर देने वाली को तो मात्र गति प्रदान किया, तो ये ब्रजवासी यशोदा या ये ब्रजवासियों को आप क्या दे सकते हैं, इससे बढ़कर आपके पास क्या क्या देंगे। हाँ ये बात बता रहा था कि माता यशोदा के जब वो गोद से बिठाना चाहती धड़ाम से वो बैठ गए, कहां वहां अपना शक्ति दिखा सकते हैं, गुलाम हो गए ना, बांधना चाह बांध के रहूंगी बांध के रहूंगी, बांध दिया, योगी नहीं पकड़ सकते, पकड़ लिया अपने आप को। इस बात को कहा है एक जगह मन की भगवान ऐसा कहा गया है कि जो प्रेम से आपका भक्ति करते हैं अपने आप को दे देते हैं, आत्मदान आत्मदान अपने आप को। तो ब्रह्मा जी ने इस लीला को अपनी आंखों से देखा था, ये सब लीला ब्रह्मा जी देखते थे। विशेषकर जब अघासुर अघासुर का वध हुआ और अघासुर के पे तो अघासुर के इस यहाँ पर जो तालाब होता है इसको क्या कहते हैं तालु अंग, यहाँ से अघासुर का आत्मा निकला था और निकला और आकाश में कुछ देर रहा और वहाँ देवता और सब देख रहे थे, ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। तो वो आत्मा थोड़ी देर रहा और शिशुपाल के जैसे जब कृष्ण अघासुर से बाहर निकले तो वो आत्मा कृष्ण के अंदर विलय हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए, राक्षस को ऐसा, बकासुर को भी ऐसा, पूतना को भी ऐसा, सकुला अपने पूरे इस राक्षस कुल को ऐसा दिया तो इन ब्रजवासियों को क्या देंगे, इन ब्रज की गौओं। यहां तक कि ब्रह्मा जी ने अहो धन्य अहो भाग्य, अहो धन्य है ये ब्रज की गायें, क्योंकि कृष्ण ने उन गायों का भी स्तनपान किया था, है ना। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी जानते थे कि ये कृष्ण ही बछड़े बने, कृष्ण ही ग्वाल बाल बने, और ये बनकर इस ब्रज की गोपियों ने बड़े प्रेम पूर्वक उनके स्तनों से दूध चूता था और बड़े प्रेम पूर्वक उनको गोद में बिठा कर दूध पिलाती थी। उनको वो पुत्रों के प्रति जितना स्नेह नहीं था, वो कृष्ण जब ग्वाल बाल बने तो उनका स्नेह और उमड़ गया, और गायों में भी इतना स्नेह। जब कृष्ण बछड़े बन गए थे तो जिन गायों ने बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ दिया था उन गायों के स्तन में भी दूध आने लगा। और वो एक दिन बलराम जी ने देखा कि गाय गोवर्धन के ऊपर चल रही, लेकिन अपने बछड़े को देखा तो उससे छलांग लगाकर वो गाय बछड़े के पास भागती हुई और उसको स्तन पान। बलराम जी आश्चर्यचकित, ये क्या देख रहा हूं, ऐसा कैसे हो रहा। तो इतना प्रेम से वो गायों ने दूध पिलाया, प्रेम से अपना अमृत रस गो रस अमृत पिलाया, अहो धन्य। अब कृष्ण उनको क्या दे सकते हैं, उनको क्या देंगे ऐसी गाय। इसलिए ब्रह्मा जी कहते ओहो धन्य ओहो भाग्य, अरे इनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जो प्रेम पूर्वक लालन पालन करती हैं, अपना पुत्र मानती हैं, अपना प्रियतम मानती हैं, और सब कुछ त्याग कर उनके लिए मात्र कृष्ण सुख के लिए। ये जो ब्रज का भाव है, गोपियों का भाव है, ब्रजवासियों का भाव है, ब्रज वरुधु वृद्गेण यो कल्पिता प्रेमा पुमर्थो महान, इस भाव में उन्होंने आर्यपथ का त्याग किया, वेद पथ का त्याग किया, लोक पथ का त्याग किया कृष्ण के लिए, कृष्ण को सुख प्रदान करने। और इतना ही नहीं, इन ब्रजवासियों के अंदर स्वदुख निवारण की कोई कामना नहीं है। योगी या दूसरे जो उपासना करते हैं, जैसे योगी या जो मुक्ति के लिए भजन करते हैं मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए जो भजन होता है तो उसमें स्व दुख मुक्ति की कामना होती है, अपने दुख निवारण की। संसार दुखमय है तो उस दुख को निवारण के लिए योगी हितपस्या करता है और उस दुख को निवारण करके ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहता है। तो उसमें ब्रह्म सुख प्राप्त करने की कामना और संसार के दुख को निवारण की कामना। लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, इनके अंदर स्व दुख निवारण की कामना नहीं है ना। कहती है ना, हम भले नरक में जाएं लेकिन कृष्ण का दुख तो दूर होगा ना। ये कितना बड़ा उत्कृष्ट प्रेम है। तो उनको कृष्ण, इसलिए कृष्ण ने कहा है, मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पार्षदों को कहा है, बंगाल से जो पार्षद आते थे तो बोला, ये देह बेचकर भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। आप जो अपना परिवार वो सब त्याग कर यहां आते हैं, चार चार महीना रहते हैं, वही भाव जो कृष्ण ने गोपियों से कहा कि आपके ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। ये पूतना लीला बहुत, कृष्ण ने अपने आरंभ में ही ऐसा लीला किया है कि अगर कोई ध्यान से और श्रद्धा से, इसमें शब्द आया है श्रुणुयु श्रद्धया, इसमें श्रद्धा होना, अटूट विश्वास होना, यही सत्य है। इतना श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है भक्ति में, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। आदो श्रद्धा, पहला ही जो इसके लिए हमारे अंदर गुण चाहिए वो श्रद्धा है। वो भक्ति में तो ठाकुर ने गीत लिखा है, श्रद्धावान जन है श्रद्धा, वो कृष्ण आए हैं, कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण है नदिया गोदुनी। ये कृष्ण सब कुछ है, तो सब कुछ है तो सब लोग क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? तो कहते हैं श्रद्धावान जन है, जिनको श्रद्धा है वही इस बात को स्वीकार करता है। श्रद्धा नहीं है वो क्या, वो तो एक स्टोरी समझता है और चला जाता है। श्रद्धा की नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, यह अटूट सत्य है, विश्वास है, जिनको कृष्ण में विश्वास है। नहीं, कृष्ण ऐसा करते हैं, कृष्ण का ऐसा गुण है। ये बाल लीला में क्या देखते हैं, आज तक कई भक्तों के साथ की लीला में आप देखिए, मीरा की भक्ति में, नरसिंह मेहता की भक्ति में। नरसिंह मेहता, ऐसा हम कथा सुना कि नरसिंह मेहता का पुत्री का जब मामेरा भरना था तो सब लोग नरसिंह मेहता को बहुत उलाहना दे रहे थे, बहुत उलाहना देते थे, ये भिखारी ये क्या देगा, ये गांव के बाहर उखड़े पे उनको डेरा दिया, ये क्या देगा। तो कृष्णा अब बैकुंठ से हैं, भगवत धाम से बैकुंठ से भगवान ने कहा मुझे जाना होगा। तो रुक्मणी जी ने भी कहा कि मैं भी साथ चलूंगा। बोला विचार कर लो, वहां जाना है झाड़ू मारना पड़ेगा उसके घर में, वहां तुम बोलोगी मैं लक्ष्मी हूं नहीं चलेगा। तो बहुत देर होगी, कृष्णा आए और कृष्णा आए तो पहले नरसिंह मेहता बोल नहीं रहे थे, ऐसा घूम कितना देर लगाया। तो कृष्ण इधर इधर, अरे अरे नरसिंह, अरे नरसिंह, ऐसा है। और फिर एक व्यापारी बनकर, कपड़े का व्यापारी बनकर सबके घर, तो उनके घर विवाह था, उनके घर गए कपड़ा गांठ लेकर। तो बोला हाँ हाँ विवाह है, आइए आइए व्यापारी सेठ जी व्यापारी। तो कपड़े का गांठ खुला तो भगवान वैकुंठ से कपड़ा लेकर आए तो उसमें क्या है। एक भक्त एक बार व्याख्या कर रहे थे द्रौपदी के चीर हरण की। तो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो जो भगवान जो साड़ियां भर रहे थे, रंग बिरंगी साड़ियां, पंचरंगी साड़ियां, रेशमी साड़ियां, तो वहां के जो राजकुमार उस सभा में बहुत सोने की कुर्सियों में राजकुमार 20,000 बैठे थे राजा, सबके मन में ऐसा पानी आ गया कि हमारी रानियों को भी ऐसी साड़ियां सुलभ नहीं है। तो दुर्योधन ने अपने नौकरों से कहा सब साड़ियों को अंदर रख दो, ताला मार दो, बहुत सुंदर साड़ियां हैं, सुबह जाकर ताला खोला अंदर कुछ नहीं है। तो भगवान जो कपड़ा लेकर आए तो सबका मन हो गया, नानू भाई का, अरे यही यही साड़ी लेना है, यही कपड़ा लेना है, लेकिन लगता है बहुत, ये तो कीमती कपड़ा है, भाव तो पूछो भाई। तो ऐसा एक भजन है कि सवा हाथ कापड़ो रुपियो हजार, भजन है हमारे पिताजी से हम सुनते थे ये भजन, सवा हाथ कापड़ो रुपियो हजार। उस व्यापारी ने कृष्ण ही सेठ बने, बोला एक सवा हाथ कपड़ा है उसका 1000 रुपया। अब आज से 500-400 वर्ष पहले 1000 रुपये सवा हाथ पहले हाथ में मापा जाता था, मीटर बाद में वो आया, मीटर नहीं क्या आया था, वार, वार, पहले हाथ था फिर वार आया, अब मीटर आया, और अभी तो थर्मामीटर आ गया। तो सवा हाथ कापड़ो रुपियो, एक सवा हाथ कपड़े का 1000 रुपया उस समय, मतलब आज का समझो 2-4-5 लाख रुपया। तो कपड़ा तो लेना है लेकिन अब इतना महंगा। तो किसी ने कहा कि इस अंजार में इतना महंगा कपड़ा लेने वाला कोई नहीं, सवा हाथ कपड़ा भी कोई लेने वाला नहीं है, 1000 रुपया कहाँ है, पूरे अंजार में घूमो तो सबके घर का पैसा इकट्ठा करो तो भी 1000 नहीं होगा। अरे सेठ जी इतना महंगा कपड़ा कौन लेगा? तो बोला एक है लेने वाला। बोला कौन? बोला नरसी, वो लेगा। तो सब लोग हंसी उड़ाने लगे उनका, अरे उनको तुम देख रहे, लेगा क्या उससे? तो उन्होंने कहा सवा हाथ कापड़ो रुपियो हजार, देसी तो ले लेसी, नहीं तो दे देसी उधार, वो पैसा देगा तो ले लूंगा नहीं तो उधार दे दूंगा। सब लोग, अरे बाप रे ऐसा क्या संबंध है तुम्हारा? तो वो बोला वो मेरा सेठ, मैं उसका दास, वो मेरा सेठ है, वो मेरा मालिक है। तो जो प्रेम करते हैं उनके अपने आप को दान दे देते हैं। ऐसा हम सोचते हैं साथ नहीं, आज भी लोक में भी लोक, ये तो मैं अभी इस समय की बात कर रहा हूं, मैं नरसिंह मेहता मीरा भाई ये तो कर्मा भाई ये तो अभी हुए, ये भागवतम जो है श्रद्धा से सुनना चाहिए, ये कथाएं में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुनया श्रद्धया मृत्या, हे मरने वालों, मृत्या मरण धर्मा, मृत्या मतलब इस संसार का कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा से इस कृष्ण कथा को सुनता है, मृत्या जो मरने वाला ही है, कितना भी प्रयास करे कुछ भी करे मृत्या, और मृत्या इधर ऐसा फेमस है मृत्या कि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक मतलब ये पृथ्वी लोक, तो दूसरे लोकों में मृत्यु नहीं है, दूसरे लोकों में मृत्यु नहीं है, तो इसको ही क्यों मृत्यु लोक कहते हैं, मृत्या। दूसरे लोक में मृत्यु है लेकिन उसका कुछ डेफिनेशन है मृत्यु सब जगह, ब्रह्मलोक में भी है, ब्रह्मा जी के लोक में भी, तो लेकिन उधर है कि भाई ब्रह्मा जी 100 साल के होंगे तब मरेंगे, ऐसा नहीं कि 60 साल में मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां भी 100 साल का तो है, कलयुग में 100 साल का आयु होगा, कौन है 100 साल का, तो क्यों बीच में ही टपक जाता है मृत्या। और ऐसा मृत्यु लोक भी ऐसा है, ध्यान देना चाहिए, वेट भी नहीं करता, ऐसा नहीं कि भाई मेरे बेटे का शादी है तो थोड़ा 2 दिन बाद आओ ना, हम कहते हैं भाई रविवार को मंदिर, हम टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्या मृत्यु आएगी तब भी ये बोलोगे टाइम नहीं है, बाजू वाले को ले जा, हमको टाइम नहीं है, वो पड़ोसी को लेके जा, टाइम कौन दिया है, टाइम तो भगवान दे रहे हैं हमको, अगर काल आके पकड़ ले अभी तो कहाँ टाइम है तुम्हारा, तुम्हारा टाइम तो खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को समय निकालना चाहिए, टाइम नहीं है ये शब्द मूर्खों का है, क्या भक्ति करते हैं उनके, उनका सूर्य क्या पहले उग जाता है, उनको भी 12 घंटा वही है, और जो नहीं करते उनको भी 12 घंटा वही है, तो टाइम नहीं है उसके लिए, टाइम नहीं है, नहीं। माला करने के लिए हमारे पास तो टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है भाई, क्या भगवान आपको हमको 12 के बला 6 घंटे ही दिए हैं? एक बात ठीक है टाइम नहीं है, अभी आधे घंटे बाद हमारा मृत्यु आने वाला है तो मैं पहले कर लूं कुछ, ऐसा है क्या? मृत्या मतलब आपका भले लड़के का एग्जाम है या बेटी का शादी है या दुकान में बहुत ग्राहकी चल रहा है, दिवाली है, ये मृत्यु कुछ नहीं देखेगा, तत्क्षण चल खाली कर भाग इधर से, इसलिए मृत्या ऐसे लोगों को कभी भी हमको काल आ सकता है, कहीं भी कभी भी, और किसी भी हमारी डिग्री से, हमारे धन से, कितना भी बड़ा पहचान से। ये भ्रम छोड़ दीजिए कि मैं तो उन ठाकुर को जानता हूं, प्रधानमंत्री तक पहचान है, मैं तो शरद पवार को जानता हूं, कुछ नहीं, वो भी मरेगा। किसी का पहचान नहीं चलता है, कुछ रिश्वत नहीं चलता है, कुछ भी बहाना नहीं चलता है, मृत्या वो पकड़ ही लेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, मृत्या को चाहिए कि वो कृष्ण की कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुने, ऐसी कथाओं को विशेषकर। और अगर कोई ऐसी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है तो गोविंदे लभते रति, तो निश्चित उसको गोविंद में अनुरक्ति होगा। गोविंद के शब्द हैं गोविंद, भगवान के तीन प्रकार के नाम हैं, ऐसा कुछ नाम जो है वो सनातन है, कुछ नाम जो भगवान के हैं वो सृष्टि लीला जब करते हैं तो सृष्टि लीला के संपर्क में आने से वो नाम पढ़ते हैं, और कुछ जो नाम है वो माधुर्य है। तो गोविंद, गोपाल, कृष्णा, ये सनातन नाम है, और इन नामों का जो उच्चारण करता है भगवत धाम को प्राप्त करता है। गोविंद ये आदि नाम है, अनादि नाम है, अनादि नाम है। और कुछ नाम जैसे परमात्मा, अंतर्यामी, सृष्टिकर्ता, पालन करता, ये गौण नाम है, ये नाम वैकुंठ भगवत धाम प्रदान नहीं करते। और सर्वोपरि ये हरे कृष्ण है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो ये प्रेम प्रदान करता है। अगर अपराध रहित इस नाम को लिया जाए तो ये प्रेम प्रदान करने वाला नाम है। तो गोविंद भी भगवत धाम प्रदान करने वाला नाम है। तो इस गोविंद में गो इंद्रियां भी होती हैं, इंद्रियों के स्वामी, या इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले, या गायों का पालन करने वाले, गोकुल में गो, गोपी, गोविंद है। ये कृष्ण लीला में इंद्र के मुख से भी ये नाम प्रकट हुआ था। भगवान के जो नाम है वो सनातन जो नाम है वो हैं, लेकिन किसी किसी भक्त के मुख से प्रकट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये सनातन गोविंद, उस गोविंद में है रति, लभते रति, लभते रति, लभते लाभ, सब लोग लाभ चाहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा लाभ है कृष्ण के नाम में प्रीति हो जाना, कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम हो जाए जीव का। इससे बढ़कर इन तीनों लोकों में, सारे ब्रह्मांड में और कोई लाभ नहीं, और कोई लाभ है ही नहीं। ये शास्त्र, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया कि भगवत चरणारविंद में जो प्रेम है, रति हो जाता है, भगवान के नाम में प्रेम हो जाता है, उससे बढ़कर जीव के लिए और कोई लाभ है, ऐसा कोई कहीं नहीं। कृष्ण के प्रति रति हो गया, ये जीवन संसिद्धि, ये जीवन की सिद्धि नहीं, संसिद्धि, ये जीवन की परमोच्च सिद्धि है, कृष्ण नाम में रति या कृष्ण में रति हो जाना। और वो रति, ये भगवान की ऐसी लीलाएं श्रद्धापूर्वक अगर हम सुनते हैं तो निश्चित हमारा कृष्ण के चरणों में रति प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। रति का एक अर्थ प्रेम भी होता है, क्यों नहीं होगा, विचार तो करेंगे तो क्यों नहीं होगा। जब ऐसी पूतना को भगवान ने ये गति प्रदान किया तो अगर हम प्रेम से भक्ति करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, हम तो विचार नहीं कर सकते क्या मिलेगा, किमुत्य किमित्य, उनको क्या भगवान देंगे। जो लोग भगवान के लिए इतना प्रयास और प्रेम पूर्वक और प्रिय वस्तु, और उसमें भी भगवान की प्रिय वस्तु या अपना जो प्रिय है वो सब प्रदान करते हैं, तो उनको क्या प्राप्त होगा। अगर विचार करेगा तो क्यों नहीं गोविंद के चरणों में प्रेम उसका होगा, निश्चित होगा। तो इस प्रकार ये पूतना मोक्ष की कथा का यहाँ सुखदेव गोस्वामी पूर्णाहुति करते हुए इस प्रकार इसका महत्व बताते हैं कि निश्चित इस पूतना मोक्ष की अद्भुत लीला, कृष्ण की बाल लीलाओं में भी अद्भुत, प्रारंभ की ही अद्भुत लीला, ये जो सुनता है तो निश्चित उसकी तृष्णा, वैष्णवों की तो तृष्णा बढ़ती है, लेकिन अवैष्णव भी अगर इस कथा को सुनता है और इसमें अगर श्रद्धा से सुनता है तो निश्चित उसका भी कृष्ण के प्रति भजन करने की उत्कंठा होगी, निश्चित उत्कंठा प्राप्त करेगी। ये ऐसी पूतनावध की लीला है। तो वैसे तो कृष्ण चरितावली गुणावली का जो सिंधु है उसमें बड़े बड़े मंदराचल डूब जाते हैं, हमारे जैसे कण की क्या औकात है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा और आप सब वैष्णवों के आशीर्वाद से हम कुछ टूटा फूटा बोले हैं, अगर कुछ क्षति गलती है तो क्षमा करेंगे। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, सब वेद भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रमा।
और दो घंटे मिलते तो तू भी चलता।